कमल रोशन प्रभु।
श्लोक में प्रहलाद महाराज ने अपने
भगवान अर्जुन जी से कहते हैं, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो कैसा वरदान दीजिए? मेरे पिता का उद्धार कीजिए। तो ये जो वरदान सुनते हुए, वरदान की मांग सुनते हुए तुरंत नरसिंह जी ने यश को उच्चारण करते हैं। हम सबको मालूम है कि उनके पिताजी, प्रहलाद के पिताजी कौन है? हिरण्यकशिप। कितना उनको दुख पहुंचा है। हिरण्यकशिप अपने स्वयं अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए उन्होंने तत्पर किया, मारने के लिए प्रयास किया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना द्वेष के पुत्र रखने के बाद भी प्रहलाद महाराज के हृदय में कोई द्वेष नहीं, बिल्कुल उनके प्रति कोई द्वेष नहीं है। ये प्रहलाद महाराज की मानता है, इसको मत्सरता, निर्मत्सरता कहा जाता है। कोई हृदय में द्वेष नहीं है, भले ही दूसरा व्यक्ति इनको बहुत दोष पहुंचाता है, बहुत दुख पहुंचाता है, लेकिन उनके प्रति जरा सा भी द्वेष नहीं, बल्कि उनको भला करने का प्रयास करना है, एक भक्त का लक्षण होता है। तो जैसे हिरण्यकशिपु का प्रति उन्होंने मांगी, वरदान मांगी, तो तुरंत भगवान नरसिंह देव ने कहा, हे प्रहलाद, तुम्हारा जैसा भक्त इस परिवार में जन्म लिया है, इसलिए तुम्हारा पिताजी क्या कहना, वो तुम्हारे जन्म 21 पीढ़ियां, यानी दूसरे शब्दों में 21 का गणना कैसे किया जाता है, तुम्हारे पीढ़ी और तुम्हारे 10 पीढ़ी पहले के और 10 पीढ़ी और आगे, टोटल 21 हो, ऐसा 21 माना जाता है। ये त्रि सप्त विधि, ये शब्द का अर्थ है, त्रि मतलब तीन, सप्त भी मतलब सात, सात गुना तीन, सत्व ही पिता भूता पितृ भी सहते अनघा अनघा। तो ये शब्द के ऊपर चर्चा करते हैं कि नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज को इस प्रकार का वरदान क्यों दिया, क्योंकि नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज का अनघा, अघा अनघा, एक सांप को एक सर्प को अघा कहा जाता है, अघासुर हमने सुना है, क्योंकि उनके हृदय में बहुत ईर्ष्या थी। तो ईर्ष्या व्यक्ति क्या करता है, मान लीजिए कि मेरा किसी के साथ झगड़ा हुआ, इससे द्वेष किया, तो उनके प्रति ईर्ष्या है, मैं क्या करता हूँ, केवल उनके प्रति ईर्ष्या है, उनके जितने मित्र है उनके प्रति ईर्ष्या करता हूँ। अगर कोई उससे बात भी करता है, देखता हाँ इसका पार्टी का है, इसको भी मैं अभी अल्हासुर जब आया था तो उन्होंने सोचा कि अब मैं क्या करूँगा, केवल कृष्ण को भी नहीं नहीं मारूंगा, मैं कृष्ण के साथ जितने भी और लोग थे ना, उनके मित्र हैं, उन सबको मार देंगे। ये पहला असुर था जो सोचा कि मैं कृष्ण के साथ अन्य मारू, हर बार तो अघासुर का एक प्लान। तो क्या हुआ, उनके ब्रास अमूम बना के खोल के बैठा अघासुर, तो उसके अंदर सारे बाल बाल अंदर चले गए। तो अघासुर अभी भी खोल के बैठा था, ये जो है कृष्ण के साथ साथ उत्तम करूंगा, क्योंकि ये खाली ग्वाल वालों को मारूंगा तो क्या होगा, तो कृष्ण मेरे प्रभु कोई कोई कुछ कर सकते हैं, दोनों के सबके साथ नष्ट कर दूंगा। तो उनका द्वेष केवल कृष्ण के साथ था, वो कृष्ण के ग्वाल और पितरों के साथ नहीं था, लेकिन फिर भी ये द्वेषी व्यक्ति क्या करता है, मैं जिनसे द्वेष रखता हूं वो और उनके साथ में उनके सारे मित्र उनके सारे परिवार को मैं नष्ट करूंगा, ये भावना रखने वाला अघासुर कहा जाता है। तो अघा मतलब सांप, सांप के हृदय में स्वाभाविक द्वेष रहता है। दो ऐसे प्राणियां हैं जो जिनका चेतना, जिनका पूरा शरीर जहर से भरा हुआ है, एक है सांप, दूसरा है बिच्छू। ये दोनों समुद्र मंथन जब हुआ था, जो शिवजी ने पूरा जहर को पिया था, उस समय कुछ जहर के बूंद इधर उधर गिर गए, तब ये दो जीव आके खा गए, तब से दोनों बहुत जहरीले हो गए, सांप और बिच्छू। इसलिए शास्त्र में वर्णन किया गया है कि जब सांप या बिच्छू को जब मारा जाता है तो साधु लोग उसको देख के बड़ा आनंद लेते हैं। हमको सब मालूम है कि एक बार प्रभुपाद जी चैतन्य मठ भक्तिनाथ ठाकुर प्रवचन में गए थे, तो उस समय एक सांप आया था, तब उधर के कुछ लोग थे वो सब सांप को मार रहे थे, जब मार रहे थे बक्सर सांप उसको देख के बड़ा आनंद लेते थे। प्रभुपाद जी के मन में शंका आई, कैसे कैसे जो साधु है, साधु तो सबके प्रति दया भावना रखना चाहिए, तो ये सांप मर रहा है तो बक्सर सांप वो आनंद कैसे ले रहे हैं, सांप को मारते मारते हुए देख रहे। तो बाद में जब प्रभुपाद जी अपने स्वयं कहते हैं कि जब मैं जंतुओं का अनुवाद कर रहा था तब मुझे एक श्लोक प्राप्त हुआ जिसके अंदर ये बात लिखा हुआ है, शाम जो है ईर्ष्या का सूचक है। तो ये जिस शाम का मृत्यु को देख के साधु बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो ईर्ष्या को मार रहे। असल में ईर्ष्या जो है वो कोई अलग वस्तु नहीं है, वो प्रेम का अभाव है। जब कृष्ण प्रेम नहीं रहता है तो स्वाभाविक तरीके से हृदय में ईर्ष्या रहता है। जहाँ प्रकाश नहीं होता है उधर अंधकार होता है, तो जहाँ प्रकाश नहीं उधर अंधकार है, जहाँ प्रेम नहीं उधर ईर्ष्या है। तो ईर्ष्या होने के नाते या प्रेम नहीं होने के नाते कृष्ण के प्रेम ईर्ष्या है। तो ये प्रेम ईर्ष्या को मारा जा रहा है, खंडन किया जा रहा है। इसका अर्थ क्या है, कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है, कृष्ण प्रेम का स्थापना हो रहा है। तो इसके देख के साधु लोग आनंदित हो रहे हैं, वर्णन हम ये सुनते हैं। तो जब प्रहलाद महाराज जिन मत सराहना सत्य भागवत की शुरुआत में भी सुनते हैं कि ये भागवत कौन समझ सकता है, वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके हृदय में ईर्ष्या की भावना नहीं है। धर्म प्रोचित कई तो वर्त निर्मत शरणाम सदाम वैद्यम, निर्मत शरणाम सदाम वैद्यम, ये भागवतम को वैद्यम कौन जान सकता है, निर्मत शरणाम जिनके हृदय में कोई मत्सरता नहीं है। तो ये अघा मत्सरता ईर्ष्या ये सब एक ही शब्द है, एक ही प्रकार के शब्द है। वैसे उसमें भी दो प्रकार है, एक होता है आप किसी को देखते हो और प्रगति करते हुए तो क्या चाहते हो कि मैं भी उनके साथ कंपटीशन करूं, मैं भी उनके लेवल में पहुंचूं, ये भी प्रकार की ईर्ष्या है। लेकिन दूसरी प्रकार की ईर्ष्या क्या, ये उनसे ज्यादा है तो उसको मैं नीचे खींचू। दो प्रकार के ईर्ष्या, उसको मैं नुकसान पहुंचा, उसको नाश कर दू, उसको मैं खत्म कर दू। तो एक होता है कि आपसे आगे कोई व्यक्ति उसको देख के आप भी थोड़ा आगे को बढ़ना चाहते, इतना दोष नहीं है इसके अंदर। लेकिन आपके आगे कोई व्यक्ति उसको नीचे खींच के उसको खत्म करने की प्रयास करना, चाहे जाने दो उसको भी मर रहे तो मैं भी मरूंगा, लेकिन दोनों खत्म। ये जो है बड़ा ज्ञान ज्ञान अच्छी से इसको सबका कहा जाता है। प्रहलाद महाराज के अंदर ये गुण बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए उनको अनाथा कहा गया। भगवान प्रहलाद महाराज के अंदर ये गुण को देख के बहुत अति प्रसन्न हो गए। कृष्ण अस्तित्व में भक्तों के अंदर सद्गुणों को देख के बहुत प्रसन्न होते हैं, बिकॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ सीइंग द गुड क्वालिटीज इन हिज डिवोटीज। ये अनेकों सद्गुण है, अच्छे अच्छे गुण है, ये हमारे आभूषण माने जाते हैं, भक्तों के आभूषण माने जाते हैं। भक्तों के पास कोई आभूषण नहीं होता है, वो क्या सादा कपड़ा पहनते हैं और सरल जीवन यापन करते हैं। लेकिन वो लोगों की नजर में सुंदर कैसे होते हैं, कहते हैं सुंदर गुणों के द्वारा सुसज्जित होते हैं। इसलिए कहा गया है कि वैष्णव का आभूषण क्या है, ये गुण है। अनेकों प्रकार के आभूषण है, आभूषणों में ये निर्मत्सर होना ये सबसे महत्वपूर्ण आभूषण है। जिस व्यक्ति के अंदर कोई द्वेष भावना नहीं रहता, जिस व्यक्ति के अंदर कोई प्रकार का ईर्ष्या की भावना नहीं रहता, वो सबके साथ उनके मित्रता रहता, सब लोग उनके प्रति आकृष्ट होते हैं। ये प्रहलाद महाराज भी असुर बालकों को क्यों आकृष्ट हुए, क्योंकि प्रहलाद महाराज में कोई द्वेष भावना नहीं है। भले उनके स्वयं पिताजी तो कम से कम उनका प्रेम करना चाहिए, भले वो पुत्र का गलत भी करता है पिताजी को माफ कर देना चाहिए, लेकिन इतना हिरण्यकश्यप इतना क्रूर था प्रहलाद महाराज को देखते वो उनको मारने तक गए। आज पैसे कोई देखा नहीं गया कि स्वयं पिताजी पुत्र को अपने हाथ से मारने के लिए आए, इतना द्वेष रखा कौन हिरण्यकश्यप प्रहलाद ने। इतना होने के बाद प्रहलाद जरा सा भी द्वेष नहीं, द्वेष की बात छोड़ो, उन्होंने अपने पिताजी का भलाई के बारे में सोचा। ये वक्त होता है, दिस इज कॉल्ड डिवोटी। एक बार हमेशा जब ईर्ष्या की बात आती है, हमेशा मैं रामानुजाचार्य का एक उत्तर सुनाता हूँ। रामानुजाचार्य एक बार वो श्रीरंगम में बड़ा प्रचार करने लगे, समय बड़ा प्रसिद्ध सन्यासी है और उनके प्रवचन भी बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन दे देते हैं, जिसके वेरी हाई क्लास लेक्चर्स श्री भाष्य रचना किया और उनके प्रवचनों को सुनने के लिए अनेकों लोग आके बैठते थे, बहुत प्रभावशाली होते। लेकिन उस समय उसी श्रीरंगम मंदिर में एक भेड़ पुजारी, हेड पुजारी जो है स्वाभाविक तरीके से हेड पुजारी को बहुत महत्व मिलता है, बहुत मान मिलता है। जब रामानुजाचार्य जब तक नहीं आए थे श्रीरंगम में, कांचीपुरम में थे, तब तक हेड पुजारी को बहुत मान देते, उनको प्रणाम करते। जैसे रामानुजाचार्य आए सब लोग हेड पुजारी को पूछना भूल गए, तो रावण ने सारी को मानना शुरू कर दिया। तो मेरे बहुत ईर्ष्या हुआ, सोचा कि किसकी वजह से मुझे कोई मान नहीं मिल रहा है, मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है, जब तक ये जीवित है तब तक मेरा कुछ होने वाला नहीं है, तो इसको मैं खत्म कर दूं। देखिए श्रीरंगा का हेड पुजारी ऐसा सोच, तो सोचा कि ठीक है क्या करे। कहा कि अभी सन्यासी है रावण आचार्य, मैं निमंत्रण दूंगा अपने घर में भिक्षा मांग भिक्षा के। भले ही देखिए उस समय रामानुज आचार्य पूरा श्रीरंग मंदिर का महंत है, सारों हजारों एकड़ जमीन के पास संपत्ति है, लेकिन सन्यास धर्म क्या होता है, भिक्षा मांग के रज्जू रहना। लेकिन रामानुज आचार्य इतना बड़ा मंदिर का, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, उसका महंत होने पर भी अपना सन्यास धर्म में जरा सा उन्होंने कमी नहीं दिखाया, वो हर घर में जाके गृहस्थ घर में जाके भिक्षा मांग। तो भिक्षा के लिए उन्होंने बुलाया, निमंत्रण दिया, आई और ब्राह्मण ने कहा था, ये हेड पुजारी ने कहा था कि आप अपनी मुख्य पत्नी को आज जो है सुंदर पकवान बनाना, हमारे घर में रामानंद चला रहे। मुख्य पत्नी बहुत खुश हो गई, सुंदर पकवान बनाना लेकिन साथ में उसके अंदर ऐसा जहर मिलाओ कि वो एक बार खाते हो मर जाए। और पतिव्रता तो है ही, पति का बात तो मानना पड़ेगा। पति पति ने कहा ठीक है आप जैसे कहेंगे वैसे करूंगी। तो रावण आचार्य आए, तो उस समय पूजा का समय था, पुजारी राजभोग अर्पण करना था, राजभोग आरती करना था। वो अपनी पत्नी को बोले मैं जा रहा हूँ पूजा करने के लिए, जहर मिला के रावण आचार्य को मार दे, देखिए क्या पूजा है। तो रावण आचार्य आए, पूजा की, कहा है मैंने बुलाया भिक्षा के लिए। तब उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे पति देव ने कहा कि आप रुकिए, बाहर रुके, वो पूजा करने के लिए गए और वो देर होगा आने के लिए, इसलिए उन्होंने कहा कि ये भिक्षा मैं स्वयं दूंगी करके वो आके दे। तो भिक्षा को स्वीकार किया, कहा कि बहुत भिक्षा दे दिया। भिक्षा लेने के बाद उनकी पति ने कहा आप जरा संभाल के रखिए इसको, कि मेरे पति ने कहा भिक्षा देने के लिए इसके अंदर जहर है, आप जानो क्या करेंगे उसके साथ। बहुत जहर मिला हुआ है, वो जाके भिक्षा को जहाँ थोड़ा सा रखे और बाहर बैठ कर सोच रहे थे कि मेरे अंदर ऐसा क्या दोष है जिसकी वजह से मेरे इतना ईर्ष्या कर रहा है। जैसे सोच रहे थे कुत्ता आके उसको खा लिया, खा ले जैसे कुत्ता खा ले तुरंत मर गया। इतना देश करता है मुझसे, वो मुझसे मारने में तत्पर है। मेरे विचार कर रहे थे पूरा रात भर। तो हेड पुजारी वापस अपने घर में आए, तो घर पे आने के बाद पत्नी से पूछा रामा आचार्य को जहर मिला के दिया, फिर भी वो मरा क्यों नहीं है। तो पत्नी ने कहा कि आपने बोला था कि जहर मिलाने के लिए, लेकिन ये नहीं कहा था कि आप उनको बताओ, बता दिया। क्यों तो ऐसा तो कुछ ऐसी चीज है ऐसा कौन सा चीज है रामानुजाचार्य को मैं दूंगा, और वो उसको इनकार नहीं कर सकते, उसको ग्रहण करना ही पड़ेगा। एक चीज है भगवान का चरणामृत, चरणामृत जो है रामानुजाचार्य तिरस्कार नहीं कर सकते, भगवान का चरणामृत। अगला दिन ऐसा सिस्टम होता है कि सबसे पहला सन्यासी जो है वो दर्शन करेंगे भगवान, और लाइन में जैसे हम लोग जाते चरणामृत लेने के लिए, वैसे हेड पुजारी का कर्तव्य होता है, उनका ड्यूटी होता है वो चरणामृत बांटते। तो वो सबसे पहले रामानुजाचार्य आए चरणामृत लेने के लिए, उनका हक बनता है सन्यासी मान कर। तो वो आए, उनको मालूम है अभी ये चरणामृत के अंदर हेड पुजारी आते हुए चरणामृत दिए, रामानुजाचार्य चरणामृत हाथ में लेते प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हुए वो चरणामृत स्वीकार करते हैं। रामानुजाचार्य भगवान को कहते हैं रघुनाथ जी मैं जानता हूँ उसके अंदर जहर, कि उन्होंने तीन वरदान मांगे, एक मैं जानता हूँ ये हेड पुजारी मुझसे इतना ईर्ष्या करता है, तो ईर्ष्या करता है तो मैं चाहता हूँ आपसे वो तो ईर्ष्या की वजह से जितना अपराध कर रहा है ये अपराध को आप पहले माफ कर दीजिए, सबसे पहला वरदान।
और दूसरा ये वरदान है कि मैं ये जानना चाहता हूँ भगवान, मेरे अंदर ऐसा क्या दोष है जिसको देख के ये जानी जो है मैं प्रतीक्षा। और तीसरी बात है कि मेरा जो जीवन है वो आपके हाथ में, जो आप ये करना चाहते जो करना चाहते करो। देखो उन्होंने क्या किया, जानते हुए इसके अंदर जहर है उन्होंने तो जहर जिन्हें स्वीकार किया, स्वीकार करने के बाद उनको कुछ असर नहीं पड़ा, नथिंग हैपेंड। तब वे पूजा को मालूम पड़ा कि साधारण व्यक्ति नहीं है, तुरंत वो चरणों में। तो ये रामानुजाचार्य के साथ उनका संपर्क होने की वजह से कितना भी ईर्ष्यालु व्यक्ति भी क्यों ना हो उनका भी हृदय का शुद्धिकरण। तभी यही प्रसंग इधर देखते हैं कि नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को मारने की प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद महाराज ने क्या सोचा, उनके पिताजी को बधाई से। तो इससे बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत हमको हमको सीखने को मिलता है। क्या है, अगर हमारे संबंध में किसी न किसी प्रकार के संबंध के साथ क्यों ना हो, पारिवारिक संबंध क्यों ना हो, या दोस्ती का संबंध क्यों ना हो, या वैसे ही गुरु शिष्य का संबंध क्यों ना हो, किसी न किसी प्रकार का संबंध भी क्यों ना हो, वैसे पहचान का संबंध क्यों ना हो, अगर हमारा संपर्क भक्त से हो जाता है, कैसा भक्त, निर्मत्सर भक्त से हो जाता है, उसकी वजह से हमारा भी उद्धार हो जाता है। असल में ये बात को ध्यान में रखना चाहिए, हम भक्त बने किसकी वजह से बने, एक भक्त और एक भक्त का कृपा की वजह से हमको भक्ति प्राप्त हो। जैसे सारभट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु प्रसंग में बहुत सुंदर बात हमको सुनने को मिलता है। एक आपको मालूम है सारभट्टाचार्य बिल्कुल उनके पास हृदय में कोई भक्ति नहीं था, तो चैतन्य महाप्रभु आते ही जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी दर्शन करके बेहोश हो गए। तो सारभट्टाचार्य उस समय उनको हटो हटो निकाल रहे थे चैतन्य महाप्रभु शरीर को, तो क्या कर रहे इधर, उसने सारभट्टाचार्य आके चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया, तो उन्होंने सोचा कि ये साधारण व्यक्ति है, उनके अंदर अनेकों भाव के लक्षण है, महाभाव के लक्षण है, तो ये विद्वान थे और सर्वलक्षण। तो अपने और शिष्यों को कहा वो प्रश्न करो, इनको आराम से उठा के लेके जाओ और उन्हें घर में रखो। और उस समय अन्य नित्यानंद प्रभु अन्य भक्तों के साथ में आए थे जगन्नाथपुरी संन्यास लेने का, पहली बार यात्रा में निकले चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी, और बहुत सारे भक्तों के साथ, तो सारे भक्त पूछने लगे कि उस समय रघुनाथ आचार्य करके और सारभट्टाचार्य के बहन हुई, उनसे पूछने लगे कि इधर एक सन्यासी आए क्या, तो हाँ आए थे, चलो देखते हैं कौन है। तो जाके देखे सारभट्टाचार्य घर में इतने महाप्रभु अभी भी मुझे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के प्रभाव की वजह से वो एकदम उनका होश ही नहीं था, जोश हुए और सब लोग पत्थर थे, कम से कम इतने महाप्रभु है
नहीं
ये भावुक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उनको बोलो कि मेरे पास आके वेदांत सीखे, मैं सिखाऊंगा। वैसे सार्वभौमाचार्य जानते हैं कि सन्यासी है, मुझे प्रणाम करना होगा। सार्वभौमाचार्य चित्रमान को प्रणाम भी किए, लेकिन मुझे में क्या भावना थी, मैं उनको वेदांत सिखाऊंगा। दूसरी भावना ये थी, अच्छा आपके जो सन्यासी है चैतन्य महाप्रभु, ये किससे दीक्षा लिया? कहा कि ये तो दीक्षा लिया केशव भारती से। केशव भारती, भारती जो है वो लो क्लास संन्यास होता है, मैं जो है हाई क्लास संन्यास दिलाऊंगा, सरस्वती संन्यास दिलाऊंगा। सरस्वती ये सब जो है हाई क्लास संन्यास होते हैं, ऐसे जो है 10 संन्यास है शंकराचार्य के साथ, उसमें तो हाई क्लास, मिडिल क्लास और लो क्लास ऐसा होता है। जैसे सरस्वती ये सब जो है हाई क्लास संन्यास माना जाता है, भारती वगैरह जो है लो क्लास माना जाता है, तो गिरी वगैरह जो है लोग और लो क्लास माना जाता है। तो मैं उनको हाई क्लास संन्यास दिलाऊंगा, मैं सार्वभौमाचार्य सोचने लगे। गोपीनाथ आचार्य बहुत दुख लगा, वो जाके चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे ऐसी ऐसी बातें कह रहा है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा कि अस्तित्व सार्वभौमाचार्य मेरा हित सोच रहा है, मेरे प्रति उनका वात्सल्य भावना है। अब देखिए इसको बोला जाता है निर्मत सराहना। कोई आके व्यक्ति आपको कहता है मैं आपके गुरु को शिक्षा प्रदान करूंगा, आपका गुरु जो है वैसे जो है इतना हाई क्लास सन्यासी नहीं है, मैं उनको शिक्षा इतनी हाई क्लास बनाऊंगा, आपको कैसे गुस्सा आया कि नहीं? वैसे गोपीनाथाचार्य को गुस्सा आया, वो गुस्से में जाके चैतन्य महाप्रभु का आपके जाके गुरु कहेंगे, जो गुरु है या सन्यासी है, वरिष्ठ सन्यासी है, उनके पास जाके ऐसे ऐसे आपका निंदा कर रहा है, ऐसे ऐसी भावना आपके प्रति, क्योंकि ये गुरु जो है हाँ सन्यासी जो सब होते हैं उनके अंदर कोई मत्सरता नहीं होता, वो आपको क्या कहेंगे इसी बात को कहेंगे। ठीक है, स्थित में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सार्वभौमाचार्य मेरे प्रति वात्सल्य की भावना, जो मेरे सन्यास की रक्षा करना चाहता है, इसलिए उनके प्रति इस प्रकार के विचार है। जिनमें रक्षा करने की जो स्वभाव है ये वरिष्ठों का होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या स्वीकार किया, वो सार्वभौमाचार्य मेरा हित चाहता है, सार्वभौमाचार्य मेरा सन्यास की संरक्षण हो, इस प्रकार की भावना रखता है। अस्तित्व वो मेरे पिता समान है, वो मेरे लिए वात्सल्य की भावना है। गोपीनाथ आचार्य सुन के शांत हो गए। तो बाद में आपको लीला मालूम है कि चैतन्य महाप्रभु गए सार्वभौमाचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करने को, साक्षात भगवान जो सारे वेदों के द्वारा जिनको जाना जाता है वही व्यक्ति वेदों को जानने के लिए जा रहे, वेदांत सूत्र को जानने के लिए जा रहे। सार्वभौमाचार्य वो तो गृहस्थ है और चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है, तो चैतन्य महाप्रभु ऊंचे आसन पर बैठे, ऊंचे आसन पर बैठा के सार्वभौमाचार्य चैतन्य महाप्रभु को वेदांत शिक्षा देने लगे। ये क्या शिक्षा दी, टीचर जो है वो नीचे बैठे है, स्टूडेंट ऊपर बैठे। सार्वभौमाचार्य भले ही उनके अंदर एक भावना थी कि मैं क्या करूं, मैं उनको शिक्षा दूं, लेकिन उनको मालूम था शिष्टाचार, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है, सन्यासी होने के नाते वो मेरे से श्रेष्ठ है, आश्रम के दृष्टिकोण से देखा जाए मेरे से श्रेष्ठ है, मुझसे श्रेष्ठ है, इसलिए मैं उनके ऊंचे आसन बिठाऊंगा और नीचे आसन में बैठ के सार्वभौमाचार्य वेदांत शिक्षा देने। 7 तक शिक्षा दिए चैतन्य महाप्रभु, ना हूं ना हाँ हूं चलता गया। तो 7 होने के बाद सार्वभौमाचार्य ने पूछा चैतन्य महाप्रभु से, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? चैतन्य महाप्रभु ने हंसते हुए कहा, आप जो कह रहे मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। सार्वभौमाचार्य ने कहा, आप कम से कम प्रश्न पूछना चाहिए ना बीच में, समझ में नहीं आ रहा होगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वेदांत तो मुझे समझ में आता है लेकिन आप जो कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा। सार्वभौमाचार्य में जैसा भाव मुझे लगा, क्या मैं जो कह रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा लेकिन वेदांत आपको समझ में आता है, वेदांत आप जानते हो, इसका अर्थ क्या है, जो आप कह रहे हो वेदांत नहीं है। सार्वभौमाचार्य को कहा, आप बताओ आप क्या समझते हो वेदांत के बारे में, और दोनों के बीच संवाद हुआ। एक एक प्रश्न का ऐसा जवाब दे चैतन्य महाप्रभु जैसे सार्वभौमाचार्य के हृदय में ऐसा लग रहा था कि बम फूट रहा हो। अंत का सार्वभौमाचार्य बड़ा लंबा चौड़ा संवाद है, उसके बारे में इतना चर्चा नहीं करेंगे। सार्वभौमाचार्य ने कहा कि श्रीपाद शंकराचार्य कौन है जो मायावाद सिद्धांत रचना की। चैतन्य महाप्रभु शंकराचार्य की वास्तविक स्थिति को बताया कि साक्षात शंकर है, भगवान के आदेश के अनुसार शिव जी ने इस प्रकार का मायावाद सिद्धांत रचना किया शंकराचार्य के रूप में,
ये सब कुछ बिल्कुल मायावाद को इतना खंडन कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने सारों के सारे अंत में चैतन्य महाप्रभु प्रणाम करते पूरा हृदय को परिवर्तन कर देते इतना हद तक जो सारी पूरा मायावादी लोग क्या करते मुक्ति मुक्ति कहते रहते हमेशा वो वही सारी जो सारे मायावादियों का सर्वश्रेष्ठ विद्वान माने जाते थे उस समय वो क्या कहते हैं चैतन्य महाप्रभु से ऐसा लगता है कि भागवत में एक श्लोक है वो गलत है जहाँ कहा गया है कि तत्तेर गंभार सुविक्षमाण मुंजानो या प्रकृतम विभाग मुंबा जीवे तो यो मुक्ति प्रदेश दहाय बात भागवत का श्लोक जहाँ सर्वदेशारी कहते हैं कि ये श्लोक में जो है मुक्ति पदे लिखा है वो गलत है उधर भक्ति प्रदेश दहाय बात होना चाहिए जो व्यक्ति मुक्ति का प्रचार कर रहे थे अभी वो मुक्ति शब्द से द्वेष करने लगे इस प्रकार सारी का पूरा हृदय परिवर्तन चैतन्य महाप्रभु को लेके आए क्या लेके आए जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेके आए सामर्थ्यचार्य एकदम बिल्कुल पक्के ब्राह्मण है ब्राह्मण जो है बिना कुछ साफ सफाई करके अपना पूजा सब कार्यक्रम कुछ भी ग्रहण नहीं करते सुबह महाप्रसाद लेके आए दरवाजा खटखटाए उसी समय सामर्थ्यचार्य इस तरह से उठे थे उठ के दरवाजा खोले चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते उन्होंने प्रणाम किया प्रणाम करके कहा चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया सामर्थ्यचार्य को महा जगन्नाथ जी महाप्रसाद दिया जैसे जगन्नाथ जी थोड़ा महाप्रसाद दिया सामर्थ्यचार्य ने क्या किया स्वीकार करके तुरंत ले लिया अपने मुंह साफ ही नहीं किए थे ब्राह्मण जो है ऐसा बिल्कुल अपना वैदिक नियम को तोड़ते नहीं है अपना जो स्मृति है उसको तोड़ते नहीं है शिष्टाचार को छोड़ते नहीं है लेकिन सामर्थ्यचार्य ने जगन्नाथ प्रसाद प्राप्त होते उनको तुरंत ले लिया और जगन्नाथ प्रसाद का महिमा का वर्णन किया कि अगर प्रसाद जितना भी पुराना होता है और उसको कुत्ता भी खाते तो भी थूक देता है लेकिन फिर भी उसका फिल्टर पर जाता नहीं है चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ प्रसाद को कितना आदर भाव को देखे सारभट्टाचार्य के अंदर उन्होंने कहा विश्व का तुम्हारे में बहुत बड़ा कृपा है इसकी वजह से तुम इतने अच्छे भक्त बन गए तब सारभट्टाचार्य कहते हैं कि मैं कृष्ण का कृपा का तो जानता नहीं हूँ लेकिन निश्चित रूप में गोपीनाथ आचार्य का कृपा मेरे ऊपर है इसीलिए मैं भक्त बना तो तब चैतन्य महाप्रभु अति प्रसन्न हो जाते इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि सारभट्टाचार्य के ऊपर कहते हैं कि हे सारभट्टाचार्य तुम्हारा ये जो परिवर्तन है ये परिवर्तन का जो कारण क्या है क्योंकि तुम्हारा संबंध किससे है गोपीनाथ आचार्य से ये संबंध तुम्हारा गोपीनाथ आचार्य से है इसीलिए तुम्हारा उद्धार हुआ अनेक शास्त्र इस प्रकार के उदाहरण है जिससे एक भक्त को पहचानना चाहिए मेरा उद्धार क्यों हुआ मेरा उद्धार होता है मेरा कोई जन्म जन्मांतर में कहीं ना कहीं या दूर में कहीं रिश्ते में या पहचान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई भक्ति किया है इसके वजह से मुझे भक्ति मिला ये बात को बहुत महत्वपूर्ण है बहुत जानना चाहिए अपने बल के हमको भक्ति प्राप्त नहीं होता है हमको भक्ति प्राप्त होता है कि हमारे नजदीक में संबंध में या दूर के संबंध में हो या पता नहीं कितने जन्मों में कोई जन्म में कोई अनेकों साल पहले अनेकों जन्मों पहले कोई ना कोई भक्ति किया है कभी इसको कहा इसी बात को लिखते हैं एक भक्त का प्राकृत्य से एक भक्त बनता है तो क्या होता है केवल उनके परिवार के लोग ही नहीं है अनेकों लोग पता नहीं वो भी जन्म लिए होंगे कहीं और पहले जन्मों में उनके साथ कोई संबंध रखा होगा वो भी उनका भी उद्धार हो जाएगा एक भक्त का इतना सामर्थ्य है जितने महापुरुष कहते हैं जितने भागवत में कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त है उनके अंदर ऐसा सामर्थ्य है कि एक भक्त के पास एक पूरा ब्रह्मांड को उद्धार करने का शक्ति रहता है लेकिन वो शक्ति कैसे किसके ऊपर आधारित है अनघा प्रभुपाद जी कहते थे प्रीचिंग इज द एसेंस प्रचार जो है वो सार लेकिन प्रचार सार है प्रचार करते हैं लेकिन क्यों नहीं हो पाता है प्रचार क्योंकि फोर्स नहीं है शक्ति नहीं है क्या है वो शक्ति प्यूरिटी इज द फोर्स प्यूरिटी का अर्थ क्या है शुद्धता शुद्धता नामक शक्ति नहीं होने की वजह से ये प्रचार जो है वो कमजोर जितना शुद्धता है उतना प्रचार शुद्धता का अर्थ एक ही है, अनेकों प्रकार की गंदगी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये छह गंदगियां है। ये छह अलग चीज नहीं है, ये छहों का जन्म कहाँ होता है, ये पांच का जन्म ईर्ष्या की वजह से। अगर कोई व्यक्ति ईर्ष्या करता है भगवान से, वही भगवान की ईर्ष्या जो है भौतिक जगत में अन्य लोगों के प्रति होता है। ईर्ष्या की वजह से क्या होता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मद उत्पन्न होता है, ये मेरे बराबर कोई नहीं है, ये जो है फालतू है, इसको क्या आता है, मुझे सब कुछ आता है, ये कौन होता है, ये थोड़ी ना अच्छा भक्त है, मैं उससे अच्छा भक्त। तो इस प्रकार विचार करना ही अहंकार कहा जाता है। अहंकार क्यों आया, क्योंकि ईर्ष्या की वजह से आया। और ये अहंकार में व्यक्ति मोहित हो जाता है, वो सोचता है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, अस्तित्व के पास कोई योग्यता नहीं है, लेकिन वो सोचता है मेरे पास योग्यता है। मोह का अर्थ क्या है, जो नहीं है उसको है करके समझना, जो है उसको नहीं करके समझना, वो है उसके अंदर सारे अवगुण, वो सोचता है मेरे पास सबसे अच्छे गुण है, ये मोह। और ये मोह को अगर जब कोई व्यक्ति पहचानता नहीं है तो उसके अंदर बहुत सारा क्रोध आता है। ये इसके अंदर जो ये व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति उसका प्रणाम नहीं करता है, उनको उनको तारीफ नहीं करता है, प्रशंसा नहीं करता, उसके अंदर बहुत क्रोध आता है। और ये क्रोध की वजह से अनेकों प्रकार के क्या करता, अपराध करता है, और अपराध की वजह से अनेकों प्रकार की कामनाएं हृदय में होती है। तो ये काम क्रोध दो मोह मद ये क्यों है, ईर्ष्या की वजह से। तो शुद्धता का अर्थ है कि निर्मत सराणा, अगर जड़ ही नहीं है तो बाकी सबकी क्या कहना। तो अशुद्धता, जितने भी गंदगी है, जितने भी अपराध के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, वो सारे इतने के अपराध के लक्षण क्यों है, क्योंकि मत्सरता है। इसलिए नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को कहते हैं कि त्रि सत्य भी पिता पूता पितृ भी सहते अनधा ते, आपके पितृ भी आपके पिता ये सब लोग पूता, वो सब पवित्र हो गए। क्यों पवित्र हो गए, क्योंकि ते अनधा, क्योंकि आपके साथ संबंध है, आप अनधा हो। यत साधुस्य कुले जातो, क्योंकि वो सब लोग आपके जैसे जो साधु हैं। प्रहलाद महाराज को दो शब्दों से संबोधित किया गया, साधु और अनघा। साधु तो अनेकों प्रकार के हैं, लेकिन किस प्रकार के साधु हो प्रहलाद महाराज तुम, निर्मत्सर साधु। साधु का अर्थ है कि जो साधुवा साधु पुष्ट तितिक्षुवा तारुणिका सुहृद शांता साधुवा साधु पुष्ट, ये साधुओं के आभूषण है। वैसे आभूषण वाले साधु बहुत सारे हैं, लेकिन अनेकों प्रकार का आभूषण में निर्मत्सर होना अति महत्वपूर्ण है। वैसे साधु हो, इसलिए भगवान भाई कुल पावन, भगवान आप प्रहलाद महाराज कौन हो, कुल पावन सारे कुल को पवित्र करने वाले। इसलिए हमेशा भक्तों को ये ध्यान रखना चाहिए कि दो शिक्षाएं इसे ग्रहण कर सकते हैं, मेरा भक्ति जो है वो प्राप्त हुआ है, कोई ना कोई और भक्त है जो मैं भक्त बनूं करके ऐसा विचार, और मैं भक्त भक्ति में और आगे बढ़ सकता हूं, क्यों कोई ना कोई भक्त जो है मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूं, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो हमारी जो भक्ति है कोई और भक्त की प्रार्थना के ऊपर आधारित है। जैसे प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना किया, किनसे प्रार्थना किया, नरसिंह से प्रार्थना किया कि मेरे पिताजी का उद्धार। इसलिए उनके पिताजी हिरण्यकशिपु का उद्धार हुआ। तो वैसे ही मेरा उद्धार भी कैसे हो सकता है, अगर कोई भक्त भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान शुद्ध से प्रभु का उद्धार कर, तो ये प्रार्थना भगवान सुनते, अच्छा इसका रिकमेंडेशन आया ना शुद्ध से, इसलिए मैं उनको उद्धार कर देता हूँ। अगर मैं जाके प्रार्थना करूं, हे भगवान मुझे उद्धार करो, कोई और व्यक्ति रिकमेंडेशन नहीं किया, सिफारिश नहीं किया, तभी मेरा उद्धार होगा। इसलिए हमेशा भक्तों की प्रार्थना के ऊपर निर्भर करना चाहिए, भक्तों से प्रार्थना करना चाहिए, हे मेरे लिए आप प्रार्थना करो, क्योंकि मेरी बात तो सुनने के लिए तैयार नहीं भगवान। इफ यू प्रे टू कृष्णा आई विल बी सेव। तो इस प्रकार हमको ये शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। दूसरा शिक्षा ग्रहण करना चाहिए कि हमारा जो शक्ति है, प्रचार करने की जो शक्ति है, वो हमारी पवित्रता है। जितना हम पवित्रता को दिखाएंगे, जितना हम पवित्र रहेंगे, उतना हम प्रचार हो सकता है।
नहीं तो इतना सारा प्रचार करने का प्रयास करने के बाद भी क्या होगा कि वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? उसका एक ही कारण है कि हमारे अंदर पवित्रता नहीं। तो पवित्रता कैसे आएगी? निर्मत्सर होने से। तो आपके शब्दों में ये निर्मत्सर कैसे बने? हाउ टू बिकम नॉन एनवियस, बड़ा महत्व। उसको कहते हैं कि अरे नाम जप करना चाहिए, गरीब करते रहो, साधना करना चाहिए, बहुत सारे बातें। लेकिन ये निर्मत्सरता हमारे हृदय में तभी आएगी जब हम क्या करेंगे, भक्तों को गुणगान करेंगे, खुलेआम गुणगान करना चाहिए। मस्जिद में जिस भक्त को आप द्वेष करते हो या जिस व्यक्ति को आप द्वेष करते हो उसके अंदर एक भी अच्छे गुण है उसको क्या करना चाहिए, पब्लिक में जोर से बोलना चाहिए, उनके सामने बोलना चाहिए। तुम्हारे अंदर जो द्वेष की भावना चली जाए, जिस व्यक्ति ने द्वेष करते हैं उस व्यक्ति को सुबह उठकर प्रणाम करना चाहिए, तभी वो जप कर सकते। ये बहुत सारे नियम है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति गुणगान करे। यू हैव टू ग्लोरीफाई, कम से कम जपा तो अच्छा, ये तो कम से कम अच्छा, ये तो कम से कम अच्छा। उसके अंदर कोई भी अच्छाई को ढूंढ के उनको विस्तार से वर्णन करना या दो तीन लोगों को बताना और कहने के द्वारा क्या होता है, हमारे हृदय जितना भी द्वेष की भावना है जहर निकल जाता है। तो इसके द्वारा हम निर्मत्सर बन सकते हैं, अनाधा बन सकते हैं। भगवत गीता में भगवान अर्जुन को भी इसी शब्दों से पुकारा, मया अनघा, हे अनघा, तुम्हारे अंदर कोई द्वेष की भावना नहीं। देखिए पांडवों के साथ कितना अत्याचार किए अर्जुन के साथ, सारे कौरव उनके इतना अत्याचार किया, लेकिन फिर भी अर्जुन ने क्या सोचा कि नहीं राज इच्छाई को लेने को, इतने युद्ध करके क्या फायदा, हाँ मैं भैक्षण किए लोग भिक्षा मांगने के लिए चाहूंगा। तो उनके अंदर इतना अच्छा गुण, इसलिए प्रभुपाद इस तात्पर्य लिखते हैं अर्जुन के अंदर इतने अच्छे गुण है क्योंकि वो भक्त है कृष्ण का और जरा सा भी ईर्ष्या नहीं उनके प्रति, दुर्योधन की कोई ईर्ष्या नहीं। तब भगवान ने अर्जुन को कहा मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ अर्जुन, क्योंकि तुम अनघा, तुम्हारे पास कोई द्वेष की भावना, इसलिए भागवत को समझना है, भगवत गीता को समझना है, तो ये द्वेष को छोड़ना होगा। द्वेष को कैसे छोड़ेंगे? जब हम दूसरे भक्त के अंदर जो अच्छाई है केवल उसी को बात करेंगे और दूसरे भक्त के अंदर जो भी अच्छे गुण है उनको लिए लोगों के सामने प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? यस बात भी अपने फैमिली रिलेशन के प्रति रहता ही है। सही बात है, ये स्वाभाविक है। तो एक बार इसी प्रकार का प्रश्न मैंने पूछा कि मैंने कहा कि जब तक हम भौतिक संसार में हैं, शरीर है, तो ये स्वाभाविक है कि आपके साथ में जो बैठता है तो उनके साथ कुछ ना कुछ संबंध अफेक्शन तो ही जाता है, वेरी नेचुरल। तो खास करके माता पिता के प्रति या पुत्र के प्रति, पति पत्नी के प्रति, ये स्वाभाविक संबंध, ये भौतिक जगत में आए तो ये संबंध अपने आप बनते हैं। तो अगर मान लिए आप भक्त बन गए तो सबसे पहले आप सोचोगे कि मेरे पिताजी भी भक्ति करें, मेरे माँ भी भक्ति जपा करें। असल में हम लोग इतना हद तक चले जाते हैं कि अब तुम जपा नहीं करोगे तब तक वो बहुत उसके ऊपर द्वेष भी बोल लेता है, झगड़ा भी करने लगे। असल तो उन लोगों को मालूम नहीं है कि ये व्यक्ति जो है अब मेरा भला चाहता है लेकिन असल तो हम भला चाहते हैं, क्योंकि मान लीजिए आपको एक अद्भुत चीज मिला तो सबसे पहले आप किसको दोगे? जो जिनको आप चाहते हैं उसको दोगे, जिनको आप प्रेम करते हो। प्रभुपाद जी कहते हैं, लिखते हैं कि एक बार ऐसा हुआ, एक उस समय ऐसा था कि सब मंदिर में निवास कर रहे हैं और ऐसा नहीं बाल कॉन्ग्रीगेशन टाइप में, मंदिर में जो है सब लोग जो भी है मंदिर के अंदर निवास अमेरिका में, तो ऐसे अभी तो ट्रैवलिंग संकीर्तन उस समय बस पार्टी में सब लोग जाया करते थे, पता जी लोग अलग बस पार्टी था ऐसा, नहीं तो भारत में भी वो सुविधा वो ऐसा कर नहीं सकते लेकिन विदेश में ऐसा था। उधर के एक सन्यासी थे मंदिर के टेम्पल प्रेसिडेंट और बहुत टायर्ड ऑफ प्रीचिंग थोड़ा, तो उस समय एक गृहस्थ परिवार थे, उनको एक माँ का कोई बच्ची हुई, थोड़ा शिशु, कन्हैया ने कहा आप सब लोग जाओ बस पार्टी में, माँ को भी कहा बस पार्टी में जाओ। बच्चा हुआ है उनको देखभाल, तो क्या आप उसका चिंता मत करो, एक माता जी है उनको सौंप दो, वो हमारे मंदिर के जितने भी 10-15 बच्चे उनको देखभाल करेगी, आप बुद्धि स्वीकार करो, प्रभुपाद जी का आंदोलन। तो अभी बच्चा जन्म हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ, 2 महीना भी नहीं हुआ, प्रभुपाद जी एक लेटर लिखी कि मेरे सन्यासी कह रहे हैं कि मुझे भक्त संकीर्तन में जाना चाहिए, ये मेरे बच्चे को देखभाल, मैं बहुत आसक्ति मेरे बच्चे के प्रति, मैंने प्रस्तुत किया तो सन्यासी मुझे प्रवचन देने लगे, दिस इज मेटीरियल अटैचमेंट, ये बहुत एक आसक्ति है, इसको छोड़ो, प्रभुपाद जी का मिशन करना चाहिए, दिस इज योर मेटीरियल अटैचमेंट टुवर्ड्स योर सन। प्रभुपाद जी ने एक ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा सन्यासी, हु इज दैट सन्यासी, कौन है सन्यासी? It is very natural for a mother to be attached to the child. You take care of the child, that is your first priority. बच्चों को देखभाल करो, first priority. तो उस तरह natural affection, object of affection. क्योंकि माँ के प्रति हो, माँ पिता के प्रति हो. लेकिन अगर वो आसक्ति जो है, उसको कृष्ण भावना करना चाहिए. कैसे करेंगे? क्या उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करने के? अगर वो स्वीकार ही नहीं करते तो क्या करेंगे? भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। कहा जाता है चैरिटी बिगिन से होम, चैरिटी बिगिन से होम। तो पूरा जगत के प्रयास को प्रचार करने के लिए जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है परिवारों में, खासकर जो पति क्या करता है वो बड़ा प्रचारक, और घर में अपने बच्चों को अपने पति को पत्नी को उनको भक्ति नहीं देते, ये सब मेटीरियल है। कभी कभी माताओं में होता है, माया है, बच्चे सब माया है, सारा जगत पे जाके क्लास लेंगे, घर में आके हम लोग उनको तो करती नहीं। चैरिटी बिगिन सेट होम, अंग्रेजी में कहावत है जो दान है चैरिटी जो है वो सबसे पहला घर में से शुरू होता है, घर में शुरू होता है, तो पहले अपने जो संबंध है उनको करो, ठीक है, अगर स्वीकार नहीं करते तो अलग बात, प्रार्थना करो भगवान से, इज अ नेचुरल ऑब्जेक्ट ऑफ अफेक्शन, इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, उसमें कोई ये नहीं। जैसे आपको भक्ति मिला, मुझे अभी भी याद है, तो सबसे बाद में जपमाला मिला, भगवद गीता मिला, सबसे पहला मुझे यही बात आया कि मैं ब्राह्मण परिवार का हूँ, मेरे पिताजी अनेक प्रकार की रिचुअल करते, पूजा करते करते, आज तक किसने भगवद गीता नहीं सीखा, जपा नहीं सिखाया, क्योंकि उसको खुद को नहीं मालूम कि सबसे पहला हूँ जाके उनको बताऊंगा, आई टेल आई टेल नो, तुम्हारा जीवन वेस्ट हो रहा है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, जपा करो, भगवद गीता पढ़ो, अपने आप को ब्राह्मण समझते हो, वो समाज वो मत सोचो, मैं पूरा 3 महीना यही तैयारी कर रहा था उनको कैसे बताऊं, उल्टा दुश्मनी हो गया क्योंकि शुद्धता नहीं, आचार करने जाएंगे तो उल्टा दुश्मनी मोड़ के बैठेंगे, क्यों? तो प्यूरिटी रहा, धीरे धीरे से मेच्योरिटी आया, थोड़ा सा शुद्धता आया, तो very natural that you want your near dear ones to become good. Rukminath Acharya bhi, वो चाहते थे कि सर्वमंडलाचारी भक्त बने, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस बात को कहते हैं कि ये मेरा रिश्तेदार है सर्वमंडलाचारी, और ये भक्त बनता है ना पूरा भयानक प्रचार हो सकता है। रुकनाथ आचार्य इच्छा जो उनका तीव्र इच्छा थी सर्वमंडलाचारी भक्त बने, तो सत्य प्रचार जो है इसी के द्वारा हो, आप केवल इच्छा व्यक्त करो भगवान से, इसको भक्त बनो, ये भक्त बनना चाहिए, भक्त बनो, और हम भी भक्त बने और भक्ति को अपने आप को बना के रख ले, क्योंकि कोई ना कोई है अपने लिए प्रार्थना करना, जब भक्तों से कोई व्यक्ति बोलते भक्त मैं जगन्नाथपुरी जा रहा हूँ तो क्या चाहिए, आपको बोलना चाहिए मेरे लिए प्रार्थना करो, ये मेरी प्रार्थना है, अभी कोई परिवार आया था बोला मायापुर जा मायापुर जाओ जाके प्रार्थना करो चैतन्य महाप्रभु की, तो प्रार्थना करने के लिए बताया तो माता पिता बोले हम कैसे प्रार्थना करेंगे आप तो अच्छे भक्त हैं, तो मैंने कहा ठीक है आप तो सुनने वाले नहीं है तो बची होगा, बोला क्या मायापुर जा रहे हो? मैंने कहा कि आप मैं जैसा कहूँगा ऐसा करना है, बच्ची ने कहा ठीक, जब चैतन्य महाप्रभु के सामने 5 साल खड़े रहना हाथ जोड़, आगे प्रार्थना करना कि कमल लोग सुंदर अच्छा भक्त बने, कुछ ना आता होगी। लेकिन वो माता पिता बोले हरे प्रभु जी हम कैसे कर सकते आपके लिए। तो यही है, ठीक है। चंद्राष्ट भारत की जय।